जो भाई बहनें नीचे बैठ सकते हैं वे आ जाएंगे, क्योंकि बाद में भी इस क्लास में आने वाले बहुत लोग होंगे। जी 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 जी, कि सेवाधारियों का भी इस समय सेवा पूरा होने का समय है, तो वे भी भाग कर आएंगे। तो हमारे बीच में अध्यात्म जगत में मास्टर ज्ञान सूर्य बनकर चमकने वाले और ज्ञान की रोशनी फैलाकर अज्ञान के अंधकार को मिटाने वाले आदरणीय राजयोगी भ्राता सूर्य भाई जी हम सब के बीच में विराजमान है। एक हाथ हिलाकर भ्राता जी का स्वागत और सत्कार, अभिनंदन और वंदन। आप दिल्ली के पास मुजफ्फरनगर से निकले ईश्वर के अनमोल रतन हैं। मेरठ यूनिवर्सिटी से आपने विज्ञान में स्नातक की डिग्री प्राप्त की। 1964 में आपने यह ईश्वरीय ज्ञान प्राप्त किया और 1968 में मधुबन में आकर अपना जीवन ईश्वरीय सेवार्थ समर्पित किया। और चूंकि आप 68 में आ गए, एक वर्ष तक बाबा का सानिध्य पाने का आपका सौभाग्य रहा। और उसी समय से शिव भोलेनाथ का भंडारा आप संभालते आ रहे हैं। वर्तमान में तीनों ही कैंपस में जो भोलेनाथ बाबा के भंडारे हैं, आपके निर्देशन में न सिर्फ सुचारू रूप से चलते हैं, लेकिन वहां का तैयार ब्रह्मा भोजन खाकर हम सब ब्राह्मण अवश्य तृप्त होते हैं। और इतना ही नहीं, ज्ञान का भी भोजन तैयार करके आप पूरे विश्व तक पहुंचाते हैं। समस्या और समाधान टॉक शो के द्वारा अपने पूरे विश्व भर की आत्माओं को समाधान प्रस्तुत किया है। आज हमारे बीच में बहुत सुंदर विषय पर प्रकाश डालने के लिए मन मना भव। तो सुनते हैं भ्राता जी से कि कैसे ये स्थिति हमें बनानी है। आदरणीय भ्राता जी,
पहले तो एक प्रश्न आया है उसका उत्तर दे देता हूँ, मैं भूल जाऊंगा नहीं तो। किसी नए भाई का है कि शांति स्तंभ की ओर इतना आकर्षण क्यों है? हड्डी रखी वहां बाबा की, इसलिए हड्डियों में इतना आकर्षण नहीं होता। किसमें होता है? बाबा ब्रह्मा जिनकी वो यादगार है, किसी स्थान पर बाबा का अंतिम संस्कार हुआ था, यानी देह को अग्नि दी गई थी, शांति स्तंभ से और झोपड़ी तक का जो रास्ता है 12 फुट समझ लो 15 फुट, इस पे संसार के सबसे अधिक पावरफुल और प्योर वाइब्रेशंस हैं, मोस्ट पावरफुल एनर्जी है। यहाँ संसार में अन्य किसी जगह ऐसी एनर्जी नहीं है। बाबा ने क्योंकि गहन तपस्या की झोपड़ी में, बाबा बहुत समय एकांत में बैठते थे। उन दिनों सीजन नहीं होते थे जैसे अब होते हैं, तो बारी पार्टी आती थी, एक दो मास चलता था गर्मी में छुट्टियों के समय, और 15-20 दिन चलता था दिवाली के आसपास छुट्टियों में। बाकी संपूर्ण शांति, डीप साइलेंस थी, यहाँ फर्श भी नहीं था, ये मिट्टी थी। बाबा बहुत समय झोंपड़ी में बिताते थे, यहीं घूमते थे योग योग। बाबा के कमरे में तो बाबा ने बहुत ज्यादा साधनाएं की हैं। ये कमरा ऐसा सुंदर नहीं था जैसा अब है, भोलेनाथ का कमरा था वो, समझ गए ना मेरी भाषा? सिंपल, अति सिंपल, बाहर ये दीवार आदि भी नहीं होती थी और शांति स्थम में सभी आत्माएं बहुत योग करती हैं। बाबा का स्थान है वहां के लिए भावनाएं हैं और बाबा का कलश भी रखा हुआ है, इसलिए वहां के वाइब्रेशंस मोस्ट अट्रैक्टिव, संसार में सबसे अधिक आकर्षक, क्योंकि ब्रह्मा नेक्स्ट टू गॉड है। पता है ना, या तो संसार में भगवान की महिमा है या दूसरा श्री कृष्ण की, वही आत्मा। शास्त्रों में तीन बायोग्राफीज को मिला दिया गया है, शिव बाबा ने काम किया ब्रह्मा के द्वारा, दोनों की मिल गई बहुत ज्यादा, और वही श्री कृष्ण थे तो तीसरे की मिल गई, इसलिए कंफ्यूजन बहुत है। तो ब्रह्मा बाबा सबसे महान योगी और हम उसके बच्चे, बोलो उत्तर दो, हम भी महान योगी या नहीं बनेंगे? कौन कौन बनना चाहते हैं हाथ उठाओ, सच्चे दिल से कौन कौन चाहते हैं? मेरे कहने से हाथ उठा दिया या? क्योंकि कुछ बनने के लिए कुछ छोड़ना पड़ता है, जब तक छोड़ेंगे नहीं कुछ बनेंगे नहीं। बाबा ने राजयोग की डेफिनेशन एक लाइन में दे दी, अपने को आत्मा समझ मुझे याद करो, छोटी सी बात, देह सहित देह के सभी संबंधों को भूल अपने को आत्मा समझ मुझे याद करो। सिंपल रूप से ये भी कहते रहे योग न कहो याद ही कहो, और याद तो हम भक्ति में भी उसे बहुत करते आए हैं। तो अब की याद और तब की याद में क्या अंतर है? तब परमात्मा के स्वरूप और धाम का ज्ञान नहीं था, इसलिए उससे बुद्धि योग नहीं जुड़ा। बुद्धि है तीसरा नेत्र, थर्ड आई ऑफ विजडम, इससे हम शिव बाबा को विजुअलाइज करते हैं। अगर हम उसको विजुअलाइज नहीं, विजुअलाइजेशन समझते हैं ना, देखना, उस पर बुद्धि को स्थिर करना, अगर हम उसको विजुअलाइज करेंगे ही नहीं अब भी, तो उसकी शक्तियां, उसकी एनर्जी, उसकी प्योरिटी हम में आएगी नहीं। सर्वव्यापी कह दिया, कह इसीलिए दिया क्योंकि पता नहीं चला कहां है, रहस्य यही है इसके पीछे। लेकिन सबका ध्यान ऊपर जाता है, भगवान जैसे भगवान कहेंगे ऊपर को, कईयों से मैं पूछ लेता हूं क्या ऐसे किया आपने, ये करते हैं ना लोग जो बाहर के भी आते हैं, भगवान जाने ऊपर को क्यों किया भाई। तो बाबा ने राजयोग की विद्या हमें दे दी है, और आजकल कुछ दिनों से रोज मुरली में क्या अभ्यास आ रहा है, आज भी कहा मैं तुम्हारा रूहानी ड्रिल टीचर हूं, भगवान ने ये ड्रिल सिखाई, यह है मन बुद्धि की ड्रिल एक्सरसाइजेज। तो मन और बुद्धि को हमें बाबा पर स्थिर करना है। बहुत ध्यान से सुनेंगे, जो आपको कहा जा रहा है योगी बनना है तो पहले इसकी विधि बहुत क्लियर हो, क्योंकि अधिकतर लोग ब्राह्मणों में इस बात से युद्ध कर रहे हैं कि मन भटकता बहुत है, और कलयुग के अंत में मन का भटकाव 99% से भी ज्यादा मनुष्यों के पास है। ब्राह्मण थोड़े ठीक हो जाते हैं, हमारी मन बुद्धि भटके नहीं तब हमारी एकाग्रता अच्छी होगी, ध्यान देंगे। पहला रहस्य, बुद्धि यदि बाबा के स्वरूप पर थोड़ी थोड़ी देर भी स्थिर होने लगे तो मन का भटकना रुक जाएगा। शरीरीपन बहुत सुंदर ड्रिल है हमारी, अशरीरीपन के अभ्यास से बुद्धि का भटकना रुक जाएगा। तीसरा अभ्यास स्वमान का अभ्यास, उससे बुद्धि का भटकना रुक जाएगा। हम बहुत प्रयोग कराते हैं, मैं बीच बीच में आपको सुना देता हूं थोड़ा। जिनका मन बहुत भटकता है, जिन पर भटकती आत्माओं का प्रकोप रहता है, क्योंकि आजकल ये प्रकोप बढ़ता जा रहा है बहुत ज्यादा कोरोना के बाद, वो सभी सवेरे उठकर और सोने से पहले 108 बार लिखेंगे, मैं मास्टर सर्वशक्तिवान हूँ, मन का भटकना भी रुक जाएगा। लगातार लिखें जब तक आपको संतोष न हो जाए। बहुत अच्छी टेक्निक है, ये सब बाबा के द्वारा बताई गई हैं। बाबा ने ये नहीं कहा कि लिखो, वो मैंने कहा। बाबा ने तो क्या टाइटल दिया हम सबको, सबसे बड़ा टाइटल है ये, और इसके बारे में मुरलियों में अधिक से अधिक बार कुछ गुह्य बातें आई हैं। उसके आधार से हमने ये उसके सरल रूप शुरू किए। जैसे आप लिख सकते हैं इस बात को, मैं बहुत सुनाता हूं, जो बच्चे मास्टर सर्वशक्तिवान के नशे में रहते हैं, विघ्न और समस्याएं उनको आ नहीं सकती। ये बाबा का महावाक्य। तो इसी आधार से हमने विघ्नों में मास्टर सर्वशक्तिवान के अभ्यास कराए। आजकल भटकती आत्माओं के प्रकोप बढ़ गए हैं। एक मैं सुनाता हूं आज का, डरना नहीं माता है, क्यों नहीं डरना, क्यों नहीं डरना, हम उनसे अधिक पावरफुल हैं। आज की मुरली से ध्यान दो, कई बातें बहुत सुंदर थी। जिधर भगवान है, बोलो आगे, उधर ही जीत है। ये बात गीता में भी है, आज भी बाबा ने कहा। छोटे मोटे विघ्न आते हैं, बाबा नहीं कह रहे थे युद्ध के मैदान में परेशानियां बहुत होती हैं, तुम भी युद्ध के मैदान में हो, राजाई ले रहे हो तो विघ्न तो आएंगे, लेकिन विघ्न हमें पावरफुल बनाएंगे। तो जिधर सर्वशक्तिवान है उधर ही जीत है। किसकी जीत होगी, बोलो, हमारी, बोलो किसकी, हमारी। तो एक माता आई आज, रोज आती है, कम से कम 5-7 केस रोज आते हैं। मैं योग करने बैठती हूँ, सामने की दीवार पे कोई सफेद वस्त्रधारी बैठा है ऐसा दिखता है। मैंने कहा बाबा होगा आज, बाबा ने कहा का ना बाबा नहीं है। फिर कभी वो काला हो जाता है, मुझे डर लगता है, कभी उसकी आंखें बड़ी बड़ी दिखती हैं। ये सब भटकती आत्माओं के प्रकोप हैं। मैं जो कुछ उसको बताया वो आपको बता देता हूँ, कभी भी ऐसा हो जाए। मैंने कहा जब भी ऐसा हो 21 बार याद कर लो, मैं मास्टर सर्वशक्तिवान हूँ। योग छोड़ दो, 5 मिनट लगेगा, नहीं तो न योग लगता, डर लगता है, फिर प्रकोप बढ़ जाता है। तो बहुतों के अनुभव हो गए, 7 बार याद किया मैं मास्टर सर्वशक्तिवान हूँ, हटा। रात को कोई आ गया, छाती पे बैठ गया, कमरे में घूमता नजर आ रहा, मैं मास्टर सर्वशक्तिवान हूँ, बाबा मेरे साथ है, संकल्प करते ही किसी को तो एक ही बार में साफ। तो ये बहुत अच्छी विधियां हैं। तो योग में बाबा के स्वरूप को देखना, मैं छोटी विधियां आपको बता रहा हूं। पहले आत्मा के स्वरूप को देखना, जिसका योग बिल्कुल नहीं लगता, क्योंकि आपके ग्रुप से कल आए मेरे पास 2-4-5 लोग, योग बिल्कुल नहीं लगता, वो जिनका योग नहीं लगता वो कुछ समय के लिए योग को एक तरफ रखकर अशरीरीपन और स्वमान का अभ्यास करेंगे। माताओं के लिए फिर जगह बनानी पड़ेगी, अब सेवादारी बहुत आएंगे। एक लाइन और पहले ही बना लो इधर। आ जाओ, पीछे वाले यहाँ आ जाओ, भाई लोग इधर चलो। फिर 6:30 बज गए ना, तो बहुत आएंगे, सेवाधारियों की सेवा पूरी हो गई। आ जाओ और आ जाओ तो, ताकि बैठ सके यहाँ। पीछे वाले आओ, उठो उठो भाई, कोई उठाए नहीं, कोई ताकतवर चलो उठे। अब क्योंकि आने वाले सभी बिल्कुल पीछे बैठते रहते हैं, कुर्सी ढूंढते रहते हैं, और भी जो पीछे वाले आगे आ सके आ जाओ, तो पीछे वाले आराम से पीछे बैठेंगे। तो मैंने आपको बताई बहुत सरल विधि, 21 दिन का प्रोग्राम बना लेना, मैं आत्मा हूं, ये मेरा शरीर है, 21 बार कर जाओ सारे दिन में। न याद रहे तो 21 बार सवेरे 21 बार शाम को रट जाओ, शुरू में रट लो, फिर धीरे धीरे उसकी अनुभूति होगी। मैं आत्मा हूं, ये मेरा शरीर है, मैं आत्मा हूं, ये मेरा शरीर है। धीरे धीरे आत्मा का स्वरूप देखो, चमकती ज्योति भ्रकुटियों के बीच में। आत्मा के स्वरूप को भी बहुत क्लियर देखना है। दिखता है? बताओ, जिस जिसको आत्मा का स्वरूप क्लियर दिखता है अपना, वो हाथ उठाओ। ठीक है, बाकी को प्रैक्टिस करनी है। 1 मिनट तक दिखता रहे, 1 मिनट काफी है। एक एक मिनट विजुअलाइज करेंगे, कई बार करेंगे। अब हम इसकी प्रैक्टिस करेंगे, रेड लाइट। चलो सभी, दोनों भ्रकुटियों के बीच में मैं चमकती हुई आत्मा, देखो अपना स्वरूप, और इस तरह देखें मुझसे चारों रंग बिरंगी किरणें फैल रही हैं। साथ में संकल्प भी करें, मैं आत्मा परम पवित्र हूं, मैं आत्मा शांत हूं, मैं बहुत शक्तिशाली हूं, मुझसे रंग बिरंगी किरणें फैल रही हैं। मन में संकल्प रिपीट करते हुए अपने स्वरूप को देखते रहें। अब कुछ क्षणों के लिए विचार करें, शरीर है ही नहीं, केवल मैं आत्मा, निराकार, क्लियर है ना? प्रैक्टिस करते रहना, प्रैक्टिस इंपॉर्टेंट। योग के 4 पिलर बना लें, लिख लो, चित्रों वाले पिलर नहीं, दूसरे बनाते हैं, स्तंभ है ना, योगी बैठा है टेबल पे और 4 पाए। योग पहला पिलर है शरीरीपन, दूसरा पिलर स्वमान, तीसरा पिलर ज्ञान का बल, और चौथा पिलर है अभ्यास, प्रैक्टिस प्रैक्टिस प्रैक्टिस। ये चार चीजें हमें लेके चलनी है और सभी मन में बहुत पावरफुल संकल्प करें संगम योग पर, मुझे अच्छा योगी बनना है। फिर पूछता हूं बनना है, क्यों बनना है ये भी सोच लो, क्योंकि योग में ही परमात्म सुख मिलता है। पहली बात, योग से शक्तियां बहुत मिलती हैं। बहुत लोगों को हम देख रहे हैं ज्ञान में चलने के बाद, लंबा समय यात्रा करने के बाद भी विघ्न बहुत आ रहे हैं, किसी में इम्प्योरिटी बहुत बढ़ रही है, किसी के जीवन में दुख बहुत बढ़ गया है, किसी के परिवारों में उलझने बहुत बढ़ गई हैं, ऐसी ऐसी समस्याएं लेकर लोग आते हैं कि सुन के भी लगता ही नहीं क्या हो रहा होगा बेचारों को। योग की कमी, योग से ही सब जानते हैं पूर्व जन्मों के वो भी कर्म समाप्त होंगे जो विघ्नों के कारण हैं। एक माता आई आज, उसकी लड़की को बेचारी यहां आ गई है, भतीजी है या लड़की है, बहुत कष्ट, डॉक्टर सब फेल, कोई इंजेक्शन उसके दुख को कम नहीं कर रहा, वो तड़फ रही है, कोई देख ही नहीं सकता ऐसी तड़फन। पूछा बेचारी ने, मैं यहां हूं क्या करूं, वहां भी जाऊंगी कुछ नहीं कर सकती, मैं चली भी जाऊं कल तो आई हूं, कुछ नहीं किया जा सकता, क्या करूं मैं। ऐसे में केवल योग के वाइब्रेशन से दूसरों को दुखों से मुक्त करेंगे। मेरे पास ऐसे ऐसे अच्छे अनुभव भी आते रहते हैं, माताओं के खास सुंदर अनुभव। कैंसर था बहुत भारी, पूरी तरह ठीक हो गया, डॉक्टरों ने छोड़ दिया था मरने के लिए, कोई इलाज नहीं है, सब ठीक हो गया। एक माता को तो पूरे सफेद दाग चेहरे पे शरीर पे, 3 मास सवेरे 3 से 5 पावरफुल योग किया, सारे दाग साफ हो गए, ये वंडरफुल अनुभव। तो योग की शक्ति चारों युगों में सबसे बड़ी शक्ति है। आज भी था मुरली में, योग बल से तुम राजाई लेते हो, ले रहे हो। तो हमें विघ्नों से बचने के लिए, बीमारियों से बचने के लिए, परिवारों में सुख शांति के लिए अच्छा योग करना ही है। नहीं तो कहते हैं बाबा मदद नहीं करता, बाबा तो करता है, गड़बड़ कहाँ होती है, हम उसे रिसीव नहीं कर पाते क्योंकि बुद्धि योग भटकता है। संगम युग पर सभी बुद्धिमान आप बाबा के बच्चे बैठे हो, बुद्धि योग को भटकाना नहीं है। देख लो कहां कहां भटकता है, सबका अलग अलग हो सकता है। बुद्धिमान वही है, मेरा अपना स्लोगन था ये शुरू से ही, बुद्धिमान वही है जो अपने चित्त को शांत कर दे। संगम युग पर जिसने ये कला सीख ली, ये ज्ञान की कला है, इसलिए मैंने योग का एक पिलर आपको ज्ञान का बल लिखाया। ज्ञान का बल, ज्ञान का चिंतन, ये हमारे चित्त को शांत कर सकता है। केवल हमें ज्ञान हो गया यहां तक नहीं, ज्ञान मिल गया ये बहुत बड़ी बात है। इस ज्ञान के लिए इस संसार में युगों से खोज थी, ऋषि मुनि ये भी नहीं जान पाए पूरी तरह क्लियरली कि मैं कौन हूं, कहां से आई है आत्मा, किसी को पता नहीं चला। आपके कोई गुरु हो पूछ लेना आत्मा कहां से आई है, कहेंगे क्या बेकार के प्रश्न पूछते हो, क्योंकि कोई उत्तर नहीं है किसी के पास। परम धाम का ज्ञान किसी के पास नहीं, सतयुग त्रेता का ज्ञान किसी के पास नहीं। दो बड़ी चीजें मिस हुई, तीसरा तो है परमात्मा का ज्ञान किसी के पास नहीं। तो बहुत बड़ा ज्ञान हमें मिल चुका है, इसका प्रयोग करेंगे चित्त को शांत करने में, सभी अप्लाई करेंगे ज्ञान को। तो योग अभ्यास में ध्यान देंगे आप, इसे छोटी सी बात पे ध्यान देंगे, स्वरूप को देखने के साथ साथ मन में उस स्वरूप का चिंतन आवश्यक है। आत्मा के स्वरूप को आप देख रहे हैं, उसके बारे में संकल्प हो। फिर से प्रैक्टिस करेंगे रेड लाइट बहुत अच्छी तरह। अब इस बार हम कुछ जोड़ेंगे उस प्रैक्टिस में, स्थिर हो जाएं आत्मा पर, आत्मा के स्वरूप को देखें, विजुअलाइज करें। चमकती मणि, मस्तक सिंहासन पर विराजमान, स्वराज्य अधिकारी हूं, मैं पीसफुल हूँ, शांत हूँ, मुझसे चारों ओर शांति की किरणें फैल रही हैं। मैं आत्मा परम पवित्र हूँ, मुझसे चारों ओर पवित्रता की गोल्डन किरणें फैल रही हैं। मैं आत्मा बहुत सुखी हूँ, सच्चे मन से संकल्प कर ले आत्मा को देखते हुए, मैं आत्मा बहुत सुखी हूँ, मेरा चित्त सभी के लिए प्रेम और सद्भावनाओं से भरा है, मैं प्रेम की भंडार हूँ, प्रेम की दाता हूँ, मैं आत्मा बहुत शक्तिशाली हूँ, मुझसे शक्तियों की लाल किरणें चारों ओर फैल रही हैं। और ये शक्तियों की किरणें मेरे चारों ओर बहुत पावरफुल आभा मंडल बना रही है। मैं इस आभा मंडल के बीच में हूं। ओम शांति। ऐसे अभ्यास करेंगे। क्लियर है? क्या क्लियर है बोलो। स्वरूप को देखते हुए चिंतन सातों गुणों का, और भी कई तरह के चिंतन हो सकते हैं, सातों गुणों का सहज करेंगे। तो मन और बुद्धि दो शक्तियां हैं हमारे पास, दोनों को यूज कर रहे हैं हम योग अभ्यास में। जब हम बाबा को याद करेंगे तो बाबा का स्वरूप सामने लाएंगे। इसमें बाबा ने कई सहजताएं हमें करके दी हैं। परम धाम में बाबा के स्वरूप को देखो, कईयों को थोड़ा कठिन होता है परम धाम में देखना, क्योंकि वो स्थान सुप्रीमली प्योर गहन शांति है। वहां उस स्थान का अनुभव आत्मा तब तक नहीं अच्छा कर पाती जब तक बहुत प्योरिटी ना हो। तो बाबा ने सरल किया, ज्ञान सूर्य से बाबा सामने है तुम्हारे, बिल्कुल सामने देखो अपने 10 फुट पर ज्ञान सूर्य चमक रहा है, उसकी किरणें फैल रही हैं, मेरे ऊपर भी पड़ रही हैं। कुछ देर ही अभ्यास कर लो, फिर कुछ देर ज्ञान सूर्य सर्वशक्तिवान सिर के ऊपर है, छत्र छाया। तो चिंतन प्लस विजुअलाइजेशन, समझ गए ना माता है? विजुअलाइजेशन देखना, विजन देखना, ये दोनों अभ्यास हमें योग में करने हैं। छोटी सी थ्योरी समझ लें सभी, क्या होता है जब हम बाबा को देखते हैं। और देखे बिना भक्ति में क्या होता रहा? हम महिमा करते रहे उसकी, वो हमारी बात सुनता भी रहा और मदद भी करता रहा। भक्ति में भी बाबा की बहुत मदद हम सबको हुई है, क्योंकि उसके अच्छे भगत कौन थे? हम ही थे, बाकी तो दिखावे वाले हैं। हे भगवान, बच्चे को पास करा दो, बस पास करा दिया फिर भूल गए। लेकिन सच्चे भक्त जिन्होंने भगवान को बहुत प्यार किया वो हम ही हैं। लेकिन जब हम उसके स्वरूप को देखते हैं तो क्या होता है? अब आसमान में सूरज इस तरफ ढल रहा है पश्चिम में, यहां से देख सकते हैं उसको? देख सकते हैं? किससे? बुद्धि से। विजुअलाइज करेंगे, आंखों से नहीं देखेंगे, बुद्धि से उसको देखेंगे। बड़ा सा आग का गोला ढल रहा है। अब ये उदाहरण आप याद रखना सदा, जैसे ही आपने उसे देखा आप उससे जुड़ गए। ये जुड़ाव है वाइब्रेशंस के द्वारा, जुड़ते ही उसकी एनर्जी हमारी ओर आने लगी। ये है योग का सिद्धांत। ये सारा संसार इस जुड़ाव से ही चल रहा है। आप में से जो बहुत अच्छा चिंतन करते हो, ये संसार का खेल कैसे चल रहा है वो करना मनुष्य के संकल्प, उसका प्रकृति पर प्रभाव, प्रकृति का वही चीज वापिस देना, ये मन के संकल्पों की गति के आधार से संसार का खेल चल रहा है। इसमें जो कुछ हो रहा है और सब बातों के साथ साथ मनुष्य के संकल्प बहुत बड़ा काम कर रहे हैं। उसमें भी किन के संकल्प? हाँ ठीक बोल रहे हैं आप, मैं थोड़ा और आगे बढ़ा देता हूँ। पहले अष्ट रत्नों के संकल्प, वे आधार हैं संसार का। फिर कौन सी उनके बाद आत्माएं? 108 ही कह दें, उनके संकल्प, उनकी स्थिति, उनकी प्योरिटी, उनके पुण्य कर्म। फिर 16108, वे भी अच्छी आत्माएं होती हैं बहुत। और फिर बहुत अच्छे अच्छे जो पुण्य आत्माएं सृष्टि पर हैं ब्राह्मणों में, मूल रूप से ब्राह्मणों में उनका असर प्रकृति पर गहरा पड़ रहा है। अन्य धर्मों में भी जो पुण्य आत्माएं हैं, जो बहुत पवित्र हैं, उनका असर प्रकृति पर बहुत पड़ रहा है। लेकिन उनका भी पड़ रहा है जो हिंसक बहुत हैं, जो क्रिमिनल बहुत हैं, जो कष्टदायी बहुत हैं, उनका बुरा असर पड़ता है। तो ऐसे हम एक दूसरे से जुड़ते हैं, समझ गए ना। अब हम शिव बाबा को देखेंगे परम धाम में, तो उससे जुड़ जाएंगे, उसकी एनर्जी हमें आने लगेगी। जिस संकल्प से हम उसे देखेंगे वही एनर्जी हमको आने लगेगी। अब जान ले सभी, मैं आत्मा शांत स्वरूप हूं। बाबा क्या है? शांति के सागर। यहां सर्वशक्तिवान याद नहीं करेंगे, शांति का सागर। तो आत्मा उसकी शांति की किरणों को आकर्षित करने लगेगी, उसकी शांति के वाइब्रेशंस आत्मा में आने लगेंगे। मैं आत्मा परम पवित्र हूं, और बाबा पवित्रता के सागर। तो उसकी पवित्र किरणें आत्मा में आने लगेंगी। मैं आत्मा बहुत शक्तिशाली हूँ, और बाबा है सर्वशक्तिवान। तो उसकी शक्तियों की किरणें आने लगेंगी। ये थ्योरी है, जितनी देर इस पर स्थिर हो जाएंगे उसको कहते हैं बीज रूप। और ध्यान से सुन लेंगे, मैं ये बातें आपको इसलिए कह रहा हूं कि आपको दूसरों को समझाने में भी काम आए। अगर हम इस अभ्यास में रहेंगे, मैं आत्मा पीसफुल और बाबा से शांति की किरणें आ रही हैं, तो हमारी साइलेंस पावर बढ़ जाएगी। हमें केवल शांति नहीं मिलेगी, हमारी शांति क्या बन जाएगी? शक्ति। हम बहुत अभ्यास करेंगे, पवित्र किरणें आ रही हैं, तो हमारी स्थिति निर्विकारी बनती जाएगी। ये बहुत बड़ी स्थिति है, और ये पवित्र वाइब्रेशंस प्रकृति में जाते रहेंगे, प्रकृति पावन बनेगी। अगर हम बाबा से शक्तियां ले रहे हैं तो क्या होगा? विकर्म विनाश होंगे। शक्तियां अग्नि बनकर विकर्मों को नष्ट करती हैं। प्योरिटी की किरणें लेने से पांचों विकार, उसके बाल बच्चे सब जलकर नष्ट होंगे। ये है योग के बारे में स्पष्टीकरण थोड़ा सा। अब हम इसका अभ्यास करेंगे। रेड लाइट। सबसे पहले फिर से अपने को आत्मा देखें। मैं चमकती हुई निराकार आत्मा भकुटी की कुटिया में, सामने देखें ज्ञान सूर्य शिव बाबा आंखों के सामने उनकी तेजस्वी किरणें, उनका दिव्य तेज दूर दूर तक फैल रहा है। सामने से उनकी किरणें मुझ पर पड़ रही हैं। अब ज्ञान सूर्य शिव बाबा सिर के ऊपर छत्र छाया, अपने अपने सिर के ऊपर देखें उन्हें। अब चलेंगे परम धाम, मैं आत्मा उड़ती हुई जा रही हूं परम धाम की ओर। अपने को देखें उड़ता हुआ, अपना दिव्य तेज चारों ओर फैलाते हुए, मैं आत्मा जा रही हूं अपने घर। पहुंचे परम धाम, चित्र बनाओ, यहां चारों ओर गोल्डन रेड लाइट फैली है। ये मेरा घर है, इस संसार में आने से पहले मैं आत्मा यहीं थी। घर में बैठी हूं, यहां की संपूर्ण शांति मुझ में समाने लगी। अब ऊपर देखें, चमक रहे हैं निराकार शिव बाबा। विज्ञान सूर्य हैं, सर्वशक्तिवान। उनकी शक्तियां दूर दूर तक फैली हैं, जैसे कि सारा ब्रह्मलोक उनके तेज से जगमगा रहा है। वे शांति के सागर हैं, प्रेम के सागर हैं, सुख शांति के सागर हैं। देखते रहें, उन्हें देखने का सुख लें। सत्यम शिवम सुंदरम। ये वही हैं युगों से जिन्हें हम ढूंढ रहे थे। ये वही हैं जिन्हें न जानते हुए भी हम बहुत प्यार करते थे। ये वही हैं जिनके दर्शनों के लिए हम बहुत भक्ति करते थे। शांति के सागर, उनकी शांति की किरणें मुझ में समा रही हैं। वे पवित्रता के सागर हैं, उनके पवित्र वाइब्रेशंस गोल्डन किरणें मुझ में समा रही हैं, सभी विकारों को नष्ट कर रही हैं। वे सर्वशक्तिमान, उनकी शक्तियों की लाल किरणें फाउंटेन की तरह मुझ पर पड़ रही हैं, अग्नि की तरह विकर्मों को जलाकर नष्ट कर रही हैं। लाल किरणें अब यहां से मैं आत्मा वापिस अपनी देह में भ्रकुटी की कुटिया में ओम शांति। ये सभी योग के बहुत पावरफुल अभ्यास। हमने योग के चार पिलर में एक पिलर अभ्यास भी लिखाया। अभ्यास किसी भी कठिन चीज को सरल कर देता है। अभ्यास सब कुछ सहज कर देगा। इसलिए आज भट्टी का ये आखिरी दिन है। सभी अपने पुरुषार्थ की कुछ प्लानिंग करना यहां से आज कर ली होगी, नहीं तो कर लेना, कल कर लेना, घर में जाके कर लेना। बिना लक्ष्य के मनुष्य को कुछ मिलता नहीं है। लक्ष्य निर्धारित करो। कैसा लक्ष्य? क्या लक्ष्य है हमारा? है देवता बनना। संगम का लक्ष्य बताओ। बाप समान तो भारी चीज है, थोड़ी हल्की कर दो, हल्की कर दो। है योगी बनना। बोलो और क्या लक्ष्य है भाइयों का? हम थोड़ा जमीनी आधार पे बात करेंगे। लक्ष्मी नारायण बनना है, बाप समान बनना तो कहते आ रहे हैं। है तो लक्ष्य बनाएंगे। मैं आपको छोटे छोटे लक्ष्य भी बता रहा हूं, चुन लेना अपने अपने। मुझे संगम युग पर सदा खुश रहना है। बात छोटी सी लेकिन बहुत बड़ी है। खुशी के दुश्मन बहुत हैं। आपको खुश देखते ही बाबा कहते हैं माया पहरा दे रही है। उस दिन मुरली में था, तुरंत खुशी को छीनने वाले आ जाएंगे कि हम दुखी हैं, ये खुश क्यों है। मुझे सदा खुश रहना है, मेरी खुशी को मुझसे कोई छीन नहीं सकता। प्लान बना लो, अपने को चेक कर लो, मेरी खुशी कहाँ गुम होती है, मैं क्या सोच लेता हूं जो खुशी चली जाती है, कौन सी कामना हो जाती है जिसकी पूर्ति न होने पर मेरी खुशी नहीं रहती, क्या कारण है मैं खुश नहीं रहती। कई लोग खुश नहीं रहते बिना कारण भी, उनको समझ में नहीं आता क्यों वो खुश नहीं रहते। जैसे मन पर एक बोझ रखा हुआ है, प्रेशर है आत्मा पर। एक लक्ष्य, दूसरा लक्ष्य बना लो, थोड़ा बड़ा लक्ष्य कर लें। मुझे जल्दी से जल्दी व्यर्थ संकल्पों से मुक्त होना है। छोटी बात नहीं है ये, लोगों का जीवन गुजर जाता है, व्यर्थ बढ़ता ही जाता है, कम नहीं होता। प्लान बनाएंगे क्या करें जो व्यर्थ चला जाए। भिन्न भिन्न बातें आती हैं और समय विकराल आता जाएगा। बाबा नाजुक कहते हैं, बाबा थोड़े सा अच्छा शब्द बोलते हैं, मैं थोड़ा सा भारी बोल देता हूं। विकराल समय आता जाएगा। कोरोना को तो भूल ही गए और भूल जाएंगे लोग। ऐसा विकराल समय आएगा, कुछ भी नहीं किया जा सकेगा। मुझे व्यर्थ से मुक्त होना है, तब मैं शक्तिशाली बनूंगी ना। बिना व्यर्थ के तो कोई, बिना व्यर्थ के छोड़े कोई शक्तिशाली नहीं बन सकता। लक्ष्य बना लो, ये थोड़ा बड़ा लक्ष्य है। तीसरा लक्ष्य, यही तो बात है सारी दुनिया की, इससे मुक्त होने के लिए तो आप यहां आए हैं। मास्टर सर्वशक्तिमान लिखा करो। मानसिक रोग दुनिया में बढ़ते जा रहे हैं। मेरी गैस के अनुसार, गैस समझती है ना माताएं भी, गैस माना हो सिलेंडर वाली गैस नहीं, मेरे अनुमान के अनुसार 2025 इस संसार के लिए बहुत भारी साल है और उसके बाद भारी भारी भारी। मानसिक रोग तूफानी बनते जा रहे हैं, ये मानसिक रोग ही है, बार बार सोचना वही चीज। तो संकल्प करेंगे, लक्ष्य बनाएंगे, मुझे अपनी स्थिति नहीं बिगाड़नी है, कुछ भी हो जाए, जो कुछ जाना है जाने दो, मुझे अपनी स्थिति नहीं बिगाड़नी है। सब कुछ जाएगा ना, पता है ना सबको, सब कुछ जाएगा, मैं भी और मेरे भी और मेरा भी, मेरे और मेरा दो हो गए ना, मेरे माना संबंधी, मेरा माना माल खजाना, जो माताओं ने अंदर रखा है ना, बहुत बहुत अंदर है, जो देख देख खुश तो होती है माताएं, वाह, लेकिन वो सब जाएगा, जाएगा या नहीं, लेकिन फिर बहुत माल मिलेगा, जाना तो है। आजकल एक केस बहुत आ रहे हैं, थोड़े बढ़ गए हैं, कि बताया कि यहाँ खजाना है जमीन में, लेकिन वो तुम्हारा ही है, वो किसी और को नहीं मिल सकता। एक बहन तो अभी आई, कहा मुझे बताया कि बस यहाँ हाथ रख दो, खजाना ऊपर आ जाएगा, ये है। मैंने कहा बलि देनी पड़ती है, सोच लो, खजाना चाहिए या जीवन चाहिए, ये बहुत हो रहा है आजकल। गुजरात में एक जगह चार मटके निकल गए सोने के, भरे हुए, घर से बस ऊपर आ गए कमरे में, माता जी ने फट से वो जो गले में पहनने वाला होता है ना, वो उठा लिया, उठाया और यहां उसको छेद हो गया, फट से फेंक दिया, लेकिन अब तो हो गया था। तो वो धन किसका है जमीन में, बोलो, देवताओं का, हम हमारा, लेकिन अभी हम देवता नहीं है ना, अभी हम देवता नहीं है, इसलिए बाबा का नहीं, बाबा क्या करेगा धन को, वो हमारे ही काम आएगा। इसलिए भूकंप बहुत होने हैं भारत में, और भारत के भूकंप सतयुग के सारे माल को ऊपर ले आएंगे, इसलिए माल बहुत मिलेगा। तो वर्तमान माल से बुद्धि हटाते चलो, बुद्धि रहेगी तो कष्ट होगा, हाय मेरा चला गया, बाबा ने बचाया नहीं, बाबा कहेगा ना जाने दो, माल बहुत मिलने वाला है या नहीं। तो लक्ष्य बना लो, मुझे स्थिति नहीं बिगाड़नी है, लक्ष्य बना लो। चौथी बात, मुझे संतुष्ट मणि बनना है, बहुत मूल्यियां हैं इस पे। लक्ष्य बना लो, मुझे योग का चार्ट रोज कर्मों में 4 घंटे से अधिक रखना है, ये लक्ष्य है हमारे, और भी कुछ आप बना सकते हैं। छोटे छोटे लक्ष्य हमें बड़े लक्ष्य को पाने में मदद करेंगे, नहीं तो बड़ा लक्ष्य लेकर चल रहे बाप समान बनना है, ये तो पता ही नहीं बनना कैसे है। तो आप प्रैक्टिकली छोटे छोटे लक्ष्य बना लो, आप लक्ष्य बना सकते हैं, मुझे सवेरे 3:30 बजे उठकर 5 बजे तक परमानंद लेना है, ईश्वरीय सुख लेना है, लक्ष्य बना लो। और छोटा, मुझे 3 टाइम भोजन पर संपूर्ण योगयुक्त होकर भोजन करना है, ऐसे छोटे छोटे लक्ष्य भी आप बना सकते हैं। तो मैं आपको कुछ 8 चीजें लिखा देता हूं, आप उनको अभ्यास करना कर्मों में। योगी वही बन सकते हैं जो कर्म योगी बने, बैठकर भी योग करना है लेकिन कर्मों में भिन्न भिन्न स्मृतियों में रहना, स्मृति स्वरूप होना कहते हैं इसे, ये योग युक्त होने का सुंदर तरीका है। कर्मों में स्मृति स्वरूप, स्मृति माना बाबा की याद नहीं, वो नहीं, वो अलग चीज है, स्मृति माना जो बाबा ने हमें याद दिलाया, तुम आत्माएं महान आत्माएं हो, ये याद रखना, मैं सृष्टि पर महान आत्मा हूं, ये स्मृति हो गई, इससे योग बढ़ेगा। तो मैं आपको 4-5 स्वमान लिखा देता हूँ। बहुत सारे स्वमान हैं, यहाँ भी शायद लिखे हैं, शांतिवन में बहुत लिखे हैं, आप खुद भी जानते हैं। पहला स्वमान, मैं इस सृष्टि की महान आत्मा हूँ। इसमें दूसरा भी जोड़ लेना, पुण्य आत्मा हूँ। बहुत सुख देगा ये संकल्प आपको, मैं पुण्य आत्मा हूँ। मैं पवित्रता की देवी हूँ, मैं पवित्रता का फरिश्ता हूँ। भाई लोग फरिश्ता ले लें। मैं मास्टर ज्ञान सूर्य हूँ, मास्टर सर्वशक्तिवान हूँ। मैं विजय रत्न हूँ, इष्ट देव देवी हूँ। और भी बहुत अच्छे स्वमान हैं जो हायर लेवल के हैं। मैं पूर्वज हूँ, विश्व कल्याणकारी हूँ, बाप समान हूँ। बाप समान बनने की सोचेंगे तो सोचते ही रह जाएंगे, और अगर ये स्वमान लेंगे, मैं बाप समान हूँ, तो बहुत इजी हो जाएगा। ऐसे और भी आप स्वमान चुन लो। कुछ कर्मों में स्वमान की स्मृति, आप कर्मों की लिस्ट बना लेना अपनी। पानी पीना है तो याद करना है, मैं फरिश्ता हूँ, मैं पवित्रता की देवी हूँ। ये बहुत बहुत सुंदर अभ्यास है, बहुत लोग इसको समझते नहीं हैं। पानी चार्ज करके पीना, ये छोटी चीज नहीं है, बहुत बड़ा साइंस है, ये वैज्ञानिकों की रिसर्च है। आप पानी पी रहे हैं, गिलास में आपने पानी लिया, दो बार भी याद कर लो उसको दृष्टि देकर, मैं पवित्रता का फरिश्ता हूँ। आपकी प्योरिटी बढ़ती जाएगी, प्योरिटी आपकी डिविनिटी बन जाएगी, प्योरिटी आपकी पावर बन जाएगी। पानी में मेमोरी बहुत होती है, जो संकल्प इसमें आपने डाल दिया वो परमानेंटली आपके अंदर चला गया। एक बहन ने तो बहुत अच्छा किया, मैंने नहीं सिखाया था उसको, वो पढ़ी लिखी थी, आपे किया, खुश नहीं रहती थी, पानी को दृष्टि देके 7 बार संकल्प करने लगी, मैं बहुत खुश हूँ। और फिर मुझे बताया, मैं इतनी खुश रहने लगी कि अब मुझे लगा कि अब मेरी खुशी तो मुझे दबानी पड़ेगी, इतनी ज्यादा खुशी हो गई। मेमोरी पावर बहुत है पानी में, इसका आप यूज करेंगे। कुछ कर्मों में बाप दादा का आह्वान, बाबा आ जाओ, इतना ही। इसकी आदत बना ले तो विनाश काल में ये आदत बहुत कल्याणकारी होगी। कुछ भी होने लगा, भगदड़ मचेगी दुनिया में, भाग दौड़, बम रख दिया गया है, गोली चलने लगी है, अर्थक्वेक्स हो गई है, कारें अंदर समा गई हैं, पूरी जो सड़क है वो फट गई है, कारें अंदर चली जा रही हैं। संकल्प करो, बाबा बोलो आ जाओ, आपकी कार पहले ही रुक जाएगी। संकल्प आएगा, यहीं रोक दो। एक का हुआ ना विकेश, पुल बनते हैं ना, ओवरब्रिज, तो ओवरब्रिज पे लगाया हुआ था कि नहीं जाना है। एक युगल जा रहे थे, थोड़ी सी जगह थी कार निकलने की, उन्हें सोचा ये पुल बन रहा है, इसी से निकल जाते हैं जल्दी। खाली था, 100 की स्पीड पे कार चला दी, आगे था वो खाली जगह, गिरे, वो कम से कम 25 फीट नीचे गिरे, मर गए सब। तो अगर बाबा का आह्वान करेंगे, विशेष रूप से आदत डालनी है, घर से बाहर निकल रहे हैं, बाबा आ जाओ साथ चलो, बाइक पर बैठ रहे हैं, बाबा आ जाओ, कार में जा रहे हैं, बाबा आ जाओ, रोज 5-7 बार ये आदत बना दो, भिन्न भिन्न कर्मों में बाबा आ जाओ, और बहुत अच्छे अच्छे अनुभव होंगे, क्योंकि विनाश काल कोई छोटा काल नहीं होगा, बहुत कुछ होने लगेगा। जो बाबा के बच्चे होंगे और उसके साथ रहेंगे, वो अनेक जगह अपने को सेफ पाएंगे। बीमारियां होंगी, दवाइयां नहीं होंगी, पानी चार्ज करके पिएंगे, दवाई का काम कर देगी। ये खेल बहुत चलने वाला है। तो अपने पुरुषार्थ की एक छोटी सी प्लानिंग बनाना, छोटी प्लानिंग कहा मैंने, बड़ी नहीं। यहां आपको बहुत उमंग आ गया होगा, सोचेंगे इस घर जाके रोज 2 बजे उठा करेंगे और फिर 2 ही दिन उठेंगे बस। इसलिए एक नॉर्मल सिंपल एंड प्रैक्टिकल प्लान, 2 शब्द ये बहुत सुंदर हैं, सिंपल एंड प्रैक्टिकल, जो सदा किया जा सके। किसी कर्म में अभ्यास करना, बाबा मेरे सिर के ऊपर छत्र छाया है। खाली बैठे हैं थोड़ी देर भी, अभ्यास कर लेना, ऊपर से बाबा की किरणें पड़ रही हैं। सबसे पावरफुल अभ्यास है, सुखदायी अभ्यास है। जैसे फाउंटेन के नीचे बैठे हैं, कभी शक्तियों का, कभी सुखों का, कभी प्योरिटी का, कभी बाबा के प्यार की तरंगे आ रही हैं, ऊपर से प्यार फील हो रहा है, कभी शांति का फाउंटेन, ये अभ्यास कर लेना। उठते ही बाबा सिखाया करते थे बहुत, जब अव्यक्त हुए तो बहुत सिखाते थे, उठते ही अभ्यास करो, मैं आत्मा परम धाम से इस तन में अवतरित हुई। बहुत अच्छा अनुभव होगा। ऐसे भिन्न भिन्न अभ्यास, बाबा मेरा खुदा दोस्त है, उसको नीचे बुला लो, दोस्त बना लो, दोस्ती की तरह उससे व्यवहार करो, बहुत मजा आएगा। और अब लास्ट बात, रोज सवेरे उठते ही अपने को चार्ज करना है सबको, क्योंकि ये ऐसा समय होता है अमृत वेले का, रोज सभी को मजा नहीं आता। नींद का प्रभाव, रात के भोजन का प्रभाव, स्वप्नों का प्रभाव, कल सारा दिन क्या किया था हमने, उसका प्रभाव आज के अमृत वेला पर आएगा। बाबा ने कहा कि जो बच्चे सारा दिन बाबा की अवज्ञा करते हैं, माया उनसे अगले दिन सवेरे बदला लेती है, या उन्हें सुला देगी और जगेंगे तो योग नहीं लगाने देगी। इसलिए अमृत वेले कई चीजों का इफेक्ट आत्मा पर रहता है। उठते ही कुछ अभ्यास भी कर लेंगे और सुंदर संकल्पों से अपने को चार्ज करेंगे। देखो आत्मा कैसे चार्ज होगी, उठते ही आपने बाबा को गुड मॉर्निंग की और खुले मन से हाथ ऊपर करके संकल्प कर दिया, मेरे जैसा भाग्यवान कोई नहीं, आंख खुलते ही भगवान से मिलन हो रहा है, कर दो ये संकल्प 3-4 बार, चार्ज होने लगी आत्मा। मैं शिव बाबा की संतान, वो सर्वशक्तिवान, उसकी शक्तियां मेरे पास भी हैं, मैं बहुत शक्तिशाली हूँ, विघ्नों से अधिक शक्तिशाली हूँ, माया से अधिक शक्तिशाली हूँ, चार्ज होने लगा मन। ये सुंदर विचार हमारे मन को चार्ज करते हैं। तो रोज का ये लक्ष्य बना लो, हमें स्वयं को उठते ही चार्ज भी करना है, योग के साथ साथ चार्जिंग, चार्जिंग इज वेरी इंपॉर्टेंट, ध्यान देंगे इस बात पे। नहीं तो क्या होता है, उठेंगे क्योंकि जब हम सवेरे उठते हैं तो मन प्राय शांत होता है, कईयों का डल होता है, तो विचार नहीं चलते, फिर योग का सुख भी नहीं मिलता, क्योंकि योग का सुख सुंदर विचारों से प्राप्त होगा, ये भूलना नहीं है। उठते ही आपने संकल्प किया, वाह क्या सुंदर समय है, स्वयं बाबा अपनी किरणों की बौछार कर रहे हैं मेरे ऊपर, ये एक संकल्प आनंदित कर देगा। कितना सुंदर समय है, शिव बाबा भोलानाथ बनकर बैठा है, भाग्य बांट रहा है, मेरे पास कितना सुंदर अवसर है, जो चाहे उससे ले लूं। सवेरे सवेरे सुंदर विचार, क्लियर है ना, विचार आपके बारे रोज नए नए आते रहेंगे, यदि बहुत अच्छा अभ्यास रोज करते रहेंगे। इस तरह अपने जीवन को योगयुक्त बनाना है आत्मा पावरफुल भी हो जाएगी, लेकिन एक प्लान जरूर बना लेना 5 पॉइंट का, उसमें अपनी कोई कमी छोड़ने का, कोई विशेषता धारण करने का, कुछ विशेष स्वमानों की प्रैक्टिस करने का, योग के अभ्यास का, किसी सुंदर विचार का। और ये याद रखना, एक ही प्लान सदा नहीं चलेगा। कोई भी प्लान थोड़े दिन के बाद बोर करने लगता है। न्यूनेस चाहिए, इसलिए बाबा ने कहा था नवीनता हो पुरुषार्थ में। तो अपने प्लानिंग चेंज करते रहना, भले ही आप एक 3 पॉइंट का प्लान बना के चलो जीवन में, 15 दिन के बाद, हफ्ते के बाद उसे बदल लो, उसमें ही कोई दूसरी बातें रख लो। प्लान हमेशा पॉजिटिव हो, ये करेंगे। ऐसा प्लान ना हो कि टाइम वेस्ट किया, तो रोज क्या लिखना पड़ेगा, किया, रोज ही लिखना पड़ेगा, उसमें आगे नहीं बढ़ पाएंगे। हमने अपने टाइम में क्या क्या किया, कौन कौन से अभ्यास किए, इससे बहुत अच्छी उन्नति होगी। तो ये भट्टी आपके लिए वरदान ही रहेगी। मधुबन में रहे 3-4 दिन, मजा आया ना, सबसे पावरफुल भूमि है ये। अब कुछ ही दिनों में ये संसार का महान तीर्थ प्रख्यात होने वाला है। नीचे से ऊपर कारें नहीं चलेंगी, क्या होगा, पैदल यात्रा होंगी। उसी से तो भक्ति में पैदल यात्रा की यादगार बनेगी। इतनी भीड़ होगी कि कारें चल ही नहीं पाएंगी। मैं सोचा करता हूं हम लोगों को कुछ और करना पड़ेगा, हेलीकॉप्टर चला देते ना नीचे से ऊपर। तो एक सुंदर समय आ रहा है, विनाश काल ही नहीं, अति सुंदर समय भी, जिसमें जय जयकार होगी, बाबा के बच्चों की भी और बाबा की भी, अकेले की नहीं होगी, बाबा के बच्चों की भी, जो योग्य बनेंगे, जिसने जैसा स्वरूप अपना बनाया होगा वही स्वरूप संसार को दिखाई देगा। इसलिए मैं अष्टभुजाधारी देवी हूं। ये अभ्यास बहुत कर लेंगे तो वही स्वरूप दिखाई देगा। ओम शांति। अब ऐसा अभ्यास करेंगे, बाबा की शक्तियों की बरसात हो रही है हमारे ऊपर।